मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, कल जिस विषय पर मैं बात कर रहा था निश्चित तौर पर आपको स्मरण होगा, उसी विषय को आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, लेकिन थोड़े से बदले हुए अंदाज में। बदला हुआ अंदाज इस मायने में है कि सबसे पहले तो मैं आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से श्रीनिवास रामानुजन जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबकी ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को आप इस पृथ्वी पर आए थे और 26 अप्रैल 1920 को आपने इस संसार को अलविदा कह दिया। 33 साल भी इन्हें पूरे नहीं मिले, इसके बावजूद ये दुनिया के महानतम गणितज्ञों में माने जाते हैं और भारत ने भी सम्मान स्वरूप इनकी जो जन्म तिथि है उसे नेशनल मैथमेटिक्स डे घोषित किया है। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना कि ये क्या बात सर कर रहे हैं। जी हाँ, अब मैं अपनी मूल बात पर आता हूं। इनको लेकर के एक फिल्म बनी है, 4-1 साल पहले वो फिल्म आई थी, मुझे ध्यान आ रहा है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। मैडम ने भी ये देखी थी, मैंने भी देखी थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। उसमें रामानुजन जी के बारे में बहुत विस्तार से उनके पूरी जीवनी को बताया गया है। इंग्लिश में है, शायद अब हिंदी में उसका आ गया हो तो मुझे मालूम नहीं है। दोस्तों, होता यह है कि उस समय इंग्लैंड में मिस्टर हार्डी थे, प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने रामानुजन जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर के उन्हें अपने यहां बुला लिया था, वे वहां गए। लेकिन जो मूल बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो ये कि उन्हें मैथमेटिक्स के सवाल दिए जाते थे रामानुजन जी को। क्लास में उन्हें मैथमेटिक्स के सवाल दे दिए जाते थे और कहा जाता था कि इसे हल करके लाओ, और बहुत कठिन सवाल होते थे वो, सामान्य सवाल नहीं होते थे। और अगले दिन सुबह रामानुजन उसका उत्तर ला करके दे देते थे। जो प्रोफेसर्स होते थे वो देखकर चकित हो जाते थे। मैं केवल हार्डी जी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोफेसर्स का जो समूह भी होता था वो देखता था और आश्चर्यचकित रह जाता था कि रामानुजन कैसे इसका हल निकाल पाए, कैसे एक स्टूडेंट जिसकी इतनी कम उम्र है, जो इतना कठिन सूत्र है, कैसे उसका हल निकाल करके ले आते हैं। तो फिल्म का वो दृश्य मुझे याद है। और फिर जब रामानुजन जी से पूछा गया कि भाई तुमने इसे सॉल्व कैसे किया, स्टेज बाय स्टेज बताओ कैसे उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही, तो रामानुजन जी कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैंने इसे कैसे सॉल्व कर लिया, बस मैंने सॉल्व कर लिया। बोले नहीं, तुम स्टेज बताओ कि आखिर में ये सही उत्तर तुम लाए कहां से। तो उन्होंने फिर इस प्रश्न का जवाब इन शब्दों में दिया था। उन्होंने कहा था, रात में मेरे सपने में मेरी कुल देवी आती हैं, शब्द हो सकता है दूसरे हो लेकिन भाव बिल्कुल यही थे, और मुझे वे उत्तर बताकर चली जाती हैं, मैं उत्तर वह आपको ला करके दिखा देता हूं। अब वो लोग कैसे इस पर विश्वास करेंगे, और आप ये मत समझिएगा कि चूंकि ये फिल्म का टुकड़ा है तो इसीलिए फिल्म में तो कुछ भी दिखा दिया जाता है। जब आप रामानुजन की बायोग्राफी पढ़ेंगे उसमें भी इसका बकायदे उल्लेख आपको मिलेगा कि उनकी कुल देवी आती थी और उनको बताकर चली जाती थी, ये उनका कहना था। दोस्तों, अब आप इसे थोड़े से अलग रूप में देखने की कोशिश कीजिए। हमें नहीं मालूम कि सच में कुल देवी आती थी तो किस रूप में आती थी, चलिए हम नहीं मालूम, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। जब रामानुजन कह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। देखिए, अदरवाइज तो क्या होता है कि सारा श्रेय वो खुद ले सकते थे कि मैं इतना ब्रिलियंट हूं और ये हूं और मैं हल निकाल लेता हूं, लेकिन वो नहीं श्रेय ले रहे हैं। तो विश्वास करने का एक कारण तो बनता है कि जो वो कह रहे हैं उन्हें हम मान लें। चलिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम नहीं भी मानते हैं और इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में क्या निष्कर्ष आएगा। मुझे लगता है कि शायद यही निष्कर्ष आए कि नहीं, सबकॉन्शियस माइंड उनकी मदद कर रहा था। फिर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, चलिए मैं उस साइकोलॉजी पर भी नहीं जा रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड आजकल इसकी बहुत चर्चा होती है और ये गलत भी नहीं है, लेकिन अगर हम भारतीय दर्शन के आधार पर इसे जानने समझने की कोशिश करें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। वैज्ञानिक आधार पर, चलिए धार्मिक और आध्यात्मिकता के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं भाई कुलदेवी आती होंगी, आती हैं, लोगों की अपने अपने कुलदेव कुलदेवियां होती हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्तिभाव रखते हैं, और फिर वो वरदान के रूप में हमें कुछ ऐसा देती हैं जो हमें चमत्कृत कर देती हैं और हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। हम इस आस्था के लोग हैं, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इस आस्था को किनारे भी कर दें और आप मुझसे उत्तर पूछें कि आस्था को आप अपने किनारे कीजिए, आप क्या सोचते हैं, तो मैं सोचता हूं कि खासकर जो हमारे अंदर एक भावनात्मक आवेश होता है, एक इमोशनल अर्ज होती है, बहुत जबरदस्त किस्म की इमोशनल अर्ज, वो जो इमोशनल अर्ज है वो इतनी गहरे उतर जाती है हमारे, इतने गहरे समा जाती है कि वो हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार ला करके डालती है जिसकी हम कहीं खोज कर रहे थे, उससे परेशान थे। और सच बात यह है कि ये जो हमारा जो इमोशनल जो लगाव था वो हमारे अपने उसी विचार की खोज के लिए था। तो ये जो इमोशनल पावर है वो इस ब्रह्मांड से उसे ढूंढ करके और हमारे दिमाग में डाल देती है और फिर हम उसे ही दुनिया के सामने रख देते हैं। दोस्तों, इस पर आप सब भी विचार करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में यदि कोई ऐसा अनुभव रहा हो तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए। अगर मिलता है तो मान करके चलिए कि आपका जो जीवन है, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो हृदय है, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट दैट, उसे ढूंढने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।